अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग वीडियोस तो लाते रहते हैं और हमारी वीडियोस होती हैं हेल्थ के और फिटनेस के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और आज की वीडियो होगी कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर। और उस पर बात करने के लिए हमारे पास आज हमारे बहुत काबिल एहतराम भाई साहिल अदीम, वो हमारे पास होंगे, वो बात करेंगे। है ये मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन इनकी एक वीडियो में हमने सुना था कि ये कहते हैं कि मुझे डीमोटिवेशनल स्पीकर कहें, तो मैं इनका तारुफ करवाऊंगी कि डीमोटिवेशनल स्पीकर साहिल अदीम भाई हैं। अब डॉक्टर वसीम होंगे हमारे साथ और डॉक्टर मुर्तज़ा होंगे, ये नस्ट में जो मेडिकल डिवाइसेस की डेवलपमेंट सेंटर है उसके CEO हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन साहिल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट और चला तो बहुत मसला सदियों से आ रहा है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि वालदैन के बेसिकली हकूक़ क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, औलाद के हकूक और फ़राइज़ क्या हैं, और ये जो वालदैन की थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग चलती है कुछ मामलों के ऊपर, इसको हम कैसे टैकल करेंगे?
असल में ना इस्लाम में जो बेसिक फ़िलासफ़ी है उसमें वालदैन के कोई हकूक नहीं है, किसी और इंसान के किसी पे कोई हक नहीं, अल्लाह का ही हक है सिर्फ इंसान पे। और अल्लाह ताला ने जो मैट्रिक्स बनाई है उस मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए फ़राइज़ हैं दूसरे के लिए। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बाप की खिदमत करूँ, ताबेदारी करूँ, जब तक कि वो अल्लाह ताला के अहकाम के अंडर मुझे अपनी ताबेदारी करवाएं। तो इसका मतलब है कि बाप के एब्सोल्यूट हुकूक कोई भी नहीं है। अब इसका ये भी मतलब है कि बाप अगर अल्लाह ताला की ताबेदारी के दौरान के इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पे जुल्म भी कर रहे हैं तो खैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मैट्रिक्स ऑफ अल्लाह के ताबेदार हूँ। हमने ये जो एक प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट निकाला ना हुकूक लिबाद का, जो कि असल में इस्लाम में है इन अ सबसेट ऑफ अ बिगर मैट्रिक्स, कि अल्लाह ताला की ताबेदारी की वजह से मैं आपकी ताबेदारी कर रहा हूँ और जो होगा अल्लाह के लिए होगा। अब हमने क्या किया, जो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट आया तो बिल्कुल एक कार्सिनोजेनिक चीज़ होती है ना, वो कैंसर क्रिएट करती है, तो ये प्लास्टिक ने भी कैंसर डाल दिया हमारे रूम में। कि अब हम वो वाली बातें भी मानना शुरू हो गए माँ बाप की, कि जो अल्लाह के खिलाफ भी जाती है,
जो शरीयत के मुताबिक
डायरेक्ट, हाँ अल्लाह के कानून के खिलाफ, बाप का कानून है, माँ का कानून है, ख़ानदान का कानून है, तो ये ख़ानदानी मजहब है, इस्लाम नहीं है। देयर इज़ नो राइट ऑफ एनी ह्यूमन बींग ऑन एनीवेयर एल्स अनलेस ही इज़ एंड अनटिल ही इज़ इनसाइड द जोन के अल्लाह ताला के कानून को रीइन्फोर्स करवा रहा है। अल्लाह ताला के कानून को जो रीइन्फोर्स नहीं करवा रहा, तो बेशक उसने बायोलॉजी में बाप ने बच्चा पैदा कर दिया हो, ये इस्लाम में किसी की उम्र की कदर नहीं है, ये बुज़ुर्गों का एहतराम इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब वरना तो अब थोड़े छोटे बच्चों ने अबू जहल को मारा था, अबू जहल ने ये तो नहीं कहा यार उम्र का ख्याल कर ले मेरा, उन्होंने क्यों नहीं ख्याल किया उसकी उम्र का, सिर्फ अल्लाह का ख्याल है, अल्लाह के कानून का ख्याल है। वो छोटा आपको तबलीग करेगा, छोटा आपको टोकेगा कौन से दीदा से, आप बेशक 70 साल के हैं और 8 साल के बच्चे ने कहा कि अंकल ये बात गलत है, तो आप उस बच्चे का भी वैसे ऐसे एहतराम करेंगे जैसे एक बड़े का एहतराम। आप सिर्फ कानून के उस एसेंस के ऊपर अपने आप को प्लेस करेंगे, उस ये हमारे बाकी के सारा कुछ कल्चर है।
वो एक शेर है ना कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा
मेरे लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब वही बात है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस्लाम में किसी और के लिए खड़ा होना मना है, साहबी नबी अलैहिस्सलाम के लिए नहीं खड़े होते थे जब वो तशरीफ होते थे हम, लेकिन क्लास टीचर क्लास में एंटर होती है तो गुड मॉर्निंग मैडम कह के सब ने खड़ा होना होता है, और ना खड़ा हो उसको स्कूल से निकाल देंगे लिटरली। क्या कहेंगे कि इस बंदे को तमीज़ नहीं, ठीक है। और हालांकि जो सबसे बड़ी बदतमीज़ी अल्लाह ताला ने कहा है, सबसे बड़ी बदतमीज़ी है कि वो कानून को ना पहचानना है, कि तुम वो अलग काम करना शुरू कर दो कि जो अल्लाह के कानून के अलावा या उसके खिलाफ हो। अलावा को बिदत कहते हैं हम, और खिलाफ जो है वो तागूत है। सो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम कि एक बंदा अपने आप को मोहम्मद अली भी के नाम है मेरा मोहम्मद अली, और मैंने बच्चे पैदा किए हैं, और एक का नाम जो ना मुसलमानों वाले नाम रख दिए, उनको बताया कि कलमा पढ़ो हम मुसलमान हैं, मगर काम कोई नहीं ऐसा करना कि जो अल्लाह के कानून के मुताबिक हो। इसको फिर कन्फ्यूज्ड कॉन्वोलेटेड किस्म की फिलासफी निकलती है, उसमें बंदा अपने आप को नमाजों के दौरान रोता भी है और बड़े सिंसियर तरीके से रोता अल्लाह के आगे, मगर काम उलट कर आता है। तो दो फरिश्ते आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं कि ये बंदे को मतलब काम सारे शैतानी तेरे और आंसू तेरे सारे रहमानी, कहाँ से असर आएगा फिर? इसलिए कहता हूँ ना कि अपने आप को समझने के लिए दुआ करें, तब पता चलेगा कि बाकी की दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही आपकी।
एक वाकया हुआ रिसेंटली ना, मैंने कहा ये भी पूछ ही लेता हूँ कि हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने ना निकाह किया हुआ था दूसरा, तो उनके वालिद को जब पता चला तो उन्होंने जबरन तलाक करवाई और कहा कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ अगर तुमने ये रिश्ता कायम रखा।
और एक और जुमला बोला उन्होंने कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालदैन की नाफरमानी।
दो अभी तलाक और उस बंदे ने फिर जबरन जबरदस्ती उससे तलाक करवाई।
ये जुमला अमूमी है कि शिर्क के बाद, हालांकि ये बात गलत है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ताग़ूत है और ये है उसने तागुती हरकत की बाप ने कि अल्लाह के कानून के अलावा या उसके खिलाफ अपना कानून नाफिज कर दी। कोई भी शख्स अल्लाह के कानून मतलब एक बीवी को तलाक देने के पीछे जो वजूहात बताएगा वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है बस। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता कि किस बीवी को तलाक देनी है। उनकी निशानियाँ बता दी या नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि बीवी अगर ये करे तब तलाक देंगे आप। उसके अलावा कोई आके आपको कह दे या मशवरा दे दे कि आप मतलब नबी अलैहिस्सलाम के पास लोग आते हैं सहाबी कि या रसूलल्लाह तलाक मुझे तलाक की बात बताएं, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं देनी तलाक, ऐसे ऐसे केसेस हैं और हम लोग मेरी भी लड़की पसंद नहीं बहू पसंद नहीं आई, ऐसे इस केस के अंदर ऐसे बाप की नाफरमानी नहीं, ऐसे बाप को तबलीग दावत देते होते हैं। अब ज़ाहिर है बाप को तो नहीं अब हाथ से रोक सकते ना, वरना तो मैं कह देता कि बाप को ऐसे बाप को भी हाथ से रोको। तागूत का अलमबरदार है अपने आप को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के मुकाबले में ले आया कि मैं बताऊँगा कि किस लड़की को तलाक देनी है कि नहीं। मतलब हकूक के बाद की बात भी एक तरफ करनी और दूसरी तरफ उस बच्ची का मतलब तहस नहस करके रख देना है। एक ना सिर्फ एक लड़की की तो सेंसिटिविटी और होती है ना, लड़के के तलाक का कोई इतना स्ट्रेस नहीं होती, लड़की की तलाक के बाद इम्प्लीकेशन बहुत बढ़ जाती है इस्लाम में भी, मैं किसी और कल्चर को तो मानता भी नहीं। सो वो तो कहीं पर बरूए मतलब किसी को टेंशन ही नहीं होती कि तलाक के बाद लड़की से करना क्या। अगर इस्लाम के असूल पता चल जाए ना तो पाकिस्तानी मर्द शादी करनी बंद कर दें कि तलाक के बाद भी किस तरीके से उस लड़की के नान नफी का इंतजाम रखना है, अपने बच्चों का इंतजाम रखना है। इतनी बड़ी रिप्रकशन है कि शादी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि आम बंदा जो कि थोड़ा सा भी शऊर रखता है वो इस्लाम में और बीवी के प्री डिवोर्स या पोस्ट डिवोर्स राइट्स की एक दफ़ा लिस्ट पढ़ ले तो वो तो कानों को हाथ लगाएगा कि नहीं भाई इससे तो बेहद बेहतर है कि मैं जाके इंडिया से लड़ाई कर लूँ, उसमें उसमें कम नुकसान होने, पैसे भी कम लगने उसमें और उसमें बच्चे भी कम मर रहे हैं, इसमें तो बच्चे भी तबाह करते हैं। तो ऐसे बाप को मैं क्या कहूँ, ऐसे बाप की ताबेदारी नहीं, ऐसे बाप की नाफरमानी करना सवाब है क्योंकि आप उस वक्त अल्लाह की फरमानबरदारी कर रहे होते हैं। तो ये लोग माँ बाप ने अपनी तरफ से एक नखरा और चस्का रखा होता है कि मैं मुझे अल्लाह ने माँ या बाप बना दिया तो मेरे ऊपर कोई नए कानून को बनाने का भी इतलाक होता तो वो तो अंबिया पे होता है, ये तो नबियों की बात है।
वो बुढ़ापे के सहारे के मतलब अभी इन्वेस्टमेंट किए जाओ बुढ़ापे का सहारा तो अगर उन्हें
बिजनेस में है ना
बिजनेस में
सहारा थोड़ी है
तो अगर उनको अल्लाह से कनेक्ट कर दे बच्चों को और बच्चों को अल्लाह के थ्रू पता चले कि वालदैन क्या है तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे,
जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली में इसी वजह से सिर्फ अल्लाह का कानून है जो बड़ी उम्र के माँ बाप की खिदमत करवाता है बच्चों से। उसके अलावा साइंस में लेथार्जी फटीग सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स कम इन टू प्ले जब बंदा फिर बहाने ढूंढ लेता है कि क्या करूं आप ही के लिए पैसे कमाने जा रहा हूं और फिर गायब और ओल्ड होम्स आपकी फिर एक वो बनती है और दायमी मस्कन बनता है। द प्रॉब्लम इज़ कि माँ बाप को अल्लाह का नाम यूज़ करने से पहले जो रूह कांपनी चाहिए ना वो नहीं कांपनी इनकी, इनको शऊर नहीं है, नाअहल भी हैं उतने जाहिल भी हैं कि जो अल्लाह का नाम लेते वक्त किसी भी किस्म का कुछ तामुल नहीं करते कि अल्लाह ने कहा है कि माँ बाप की वो बात माननी है। अल्लाह ताला ने ऐसे माँ बाप को के साथ जो सलूक करने के लिए कहा है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता इस तरह के प्रोग्राम में क्योंकि ऑडियंस में बच्चे भी होते हैं, मैं इस तरह की सख्त जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नहीं तो बड़े बड़े बच्चों ने बदर में ओहद में अपने अपने बापों के सर कलम किए हैं। जो अल्लाह के खिलाफ चलेगा उसका उसकी कोई दर्जा नहीं है उसका, तो ध्यान में रखिएगा कानून सिर्फ अल्लाह बनाएंगे और कोई कानून बनाने का मजाज नहीं है, और अगर कोई बनाएगा तो वो नबी थे और अब किसी ने नबूवत का दावा करना है तो आ जाए फिर वो बनाए फिर कानून, हमारे दीन में तो कोई नया नबी नहीं आना। अब
अल्लाह के कानून के पीछे हज़रत अबू बकर जो है वो
मैं उन्हीं का मिसाल देने लगा था अभी, फिर मैंने कहा कि अभी वो सख्त हो जाएगी बात कि ऐसे लोग फिर अपने माँ बाप के साथ कोई ज़बरदस्ती दस्तराजी ना कर बैठें, इसकी इजाज़त नहीं है आपको कि आप अपने बाबा पे हाथ उठाएं जितना मर्जी जो मर्जी हो जाए जब तक कि वो अल्लाह का दुश्मनी का ऐलान ना कर दे। तो ये तो जहालत का ऐलान कर रहे हैं तो इस पर हाथ नहीं माँ बाप पे हाथ नहीं उठाएंगे आप कभी, मगर नाउज़ बिल्ला ऐसे माँ बाप की ताबेदारी करें कि जो किसी बच्ची को इसलिए तलाक दे रहे हैं कि उनकी मर्जी से शादी नहीं हुई, तो मर्जी का कहीं पर तलाक नहीं शादी में, चार गवाहों की ज़रूरत है मुसलमानों की कि हमने देख ली शादी हो गई, लड़की के वली की इजाज़त की ज़रूरत है, ये लड़के के बाप कभी नहीं बता सकते माँ के जाके तलाक दे किसी को, ये ऐसा कोई ये इस्लाम नहीं है। हिंदुओं में शायद होता हो, एक्चुअली मैं सही बताऊं मैंने पढ़ा उसमें भी ऐसा नहीं है, वो भी उनका कल्चरल इशू था, उनके मज़हब में भी ऐसा नहीं है, ये दो नंबरी जो है ना हमने खुद इजाद की है।
चलें अगला सवाल ये है कि जो मुआशरे में आजकल अदम बर्दाश्त वाली कैफियत है, मतलब आप चाहे सिर्फ मुआशरे में सिर्फ मुराद आपके घर से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे अभी हमने ये मिसाल दी है शादी वाले, ये भी तो बेसिकली अदम बर्दाश्त वाला ही सिलसिला था ना कि ये बेटे ने पूछे बगैर कैसे कर लिया या ये मतलब हम एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं, हमारी पहली जो बहू है वो फैमिली से है, तो ये बाहर वाली बाहर से कैसे आ गई, तो ये आदम बर्दाश्त ही है कि मेरे से नहीं पूछा, ठीक है, तो इसको कैसे हम
आदम बर्दाश्त एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ये तो चलें, इस पूछना तो चाहिए था लड़के को, मगर इस बेस पे अगर उसने कर ली शादी बगैर पूछे तो तलाक नहीं होनी चाहिए। मगर बर्दाश्त का जो बेसिक एलिमेंट है ना, उसके पीछे जो साइंस है, जो सोशियोलॉजिस्ट में एंथ्रोपोलॉजी में, वो उस तरीके उस जगह तक पहुंच रहे हैं जहाँ पे अल्लाह ने अपने कवानीन के थ्रू अंबिया के थ्रू एक मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपको सबको पता चल जाए कि एक मेंटल एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो हर बंदे को करना चाहिए अपने साथ, कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आज भी इसी तरीके से हम यही कपड़े पहन के यही सोच के साथ इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं एक दूसरे को जानते हैं, टाइम मशीन में जाएं और 1400 साल पहले अबू बकर सिद्दीक के, उमर खत्ताब के, आली बिन अबी तालिब के, या फिर नबी अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट मदनी दौर के, क्योंकि उस वक्त स्टेट बन चुकी थी, 10वीं हिजरी तक चले पहुँच जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि इतनी लिबर्टी एक इंडिविजुअल को थी ना, इतनी ओपननेस थी कि अमेरिका में भी आज वो नहीं है। आपको कभी भी कोई नहीं पूछता था कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तो लगाता ही नहीं था कोई, क्योंकि सूरह हुजरात सबको अजबर थी, खून में सराइयत थी सूरह हुजरात की, कोई किसी के बारे में जासूसियाँ नहीं करता था, कोई किसी के बारे में ये नहीं पूछता था कि वो फलां ने क्या ले लिया, फलां ने क्या खरीद लिया, फलां के पास क्या है, कोई किसी को ये करते नहीं देखता था कि गुनाह करा, सब एक दूसरे का गुनाह छुपाते होते थे, समझ रहे, ये वो मुआशरा चल रहा था, इतनी ओपननेस से, इसलिए फिर ऐसा कोई इल्म का सैलाब आया उनकी तरफ से कि हर बंदा हर बंदे से सीखता था। इसको इमामिया दौर कहते हैं, उलमा कराम पहले 300 साल तक फतवा कैसे लिया जाता था मुसलमानों में कि किसी भी चलते फिरते बंदे को, जिसको आप दुकानदार है, जानने वाला है, वहाँ पे इस बंदे का कारोबार है, और देखते थे यहाँ बंदा सादिक है, ठीक है, सच्ची बात करता है, सीधी खड़ी बात करता है, तो उसे अपना मसला बयान करके जो जवाब ले रहे थे उसको फतवा समझते थे। इतना ओपन था, कभी किसी को पता नहीं था कि फिरका क्या होता है, तो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, कि उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है। इसको इमामिया दौर कहते हैं। 300 इयर्स तक मुसलमानों को पता ही नहीं था कि फिरके का लफ्ज़ भी कहीं से काउंट करता है, और आजकल की सबसे मशहूर हदीस क्या, स्कूलों की दीवारों पर लिखी हुई है बेवकूफ़ों ने, नाहंजारों ने, कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के बनी इसराइल के 71 फिरके हैं, तो मेरी उम्मत के 72 फिरके होंगे, और फिर यू नो जो भी नबी अलैहिस्सलाम आगे शाह, सबको हदीस याद है। मैं मतलब एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही समझ लें इस वीडियो को, आपको अगर हदीस का पता है तो आप सहाबा से भी बड़े आलिम हो गए, सहाबा को भी ये हदीस नहीं पता थी, ये हदीस बाद में प्रॉपगेट, यकीनन सही हदीस है, सही तो नहीं, खैर तिर्मिज़ी में कोटेड है, मगर इसकी सेहत के ऊपर बहस है कि कुछ उलमा ने कहा है कि इसमें ऐसा तरद्दुद ना करें, बस चैन मुनकता है, बाकी मतन ठीक है इस हदीस का, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये चार्टर है हमारा, हमने इसको ऐसा चार्टर बनाया हुआ है, अपने आप को जन्नती और दूसरे बंदे को दोस्ती कहने के लिए इस हदीस का सर्टिफिकेट ले लिया हमने। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे और सिर्फ बरेलवी जन्नत में, या फिर देवबंदी जन्नत में, या सुन्नी जन्नत में, या शिया जन्नत में, या अहले हदीस जन्नत में, या सलफ सालहीन जन्नत में, ऐसा कुछ भी नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जो मेरे और तुम्हारे नहज के ऊपर होंगे। बात इतनी सी बात थी, अब वो क्या थी, वो ओपननेस थी, वो लैक ऑफ जजमेंट थी। मैं आपको इतनी सी बात बताऊं कि आप जब कोई गलती हो जाती है आपसे, इस्लाम का एसेंस क्या है, मेरे से कोई गुनाह हो गया, इस्लाम का एसेंस ये है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेंगे, सबसे पहली चीज़ सोच आती है कि इंसान हूँ, बशर हूँ, अल्लाह ताला ने खुद कहा है तौबा करो, उसका मतलब ये था कि गुनाह तेरे से होगा ही होगा, वरना तौबा का कॉन्सेप्ट ही ना होता। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है इसका। इसका मतलब क्या था कि सहाबा इकराम भी जब नबी अलैहिस्सलाम के अपने दौर के अंदर, या यू नो खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर, जब किसी बंदे को ऐसा काम करते हुए देखते थे तो उसको टैग नहीं करते थे, ही विल नेवर बी नोन एज समवन जिसने गुनाह किया। हम लोग, हमारी नेचुरल साइकोलॉजी, आप तो साइंस भी इस जगह पर पहुँच चुकी है कि मैं कभी भी उस बंदे के साथ नहीं उठूँ बैठूँगा कि जो मुझे टैग करता है, इसको हम जजमेंट कहते हैं। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ माया हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि लानत बरसाओ उस बंदे पे कि जो दुनिया में ये बता दे किसी को कि कौन जनती है और कौन दोस्ती है। और हमने पूरी की पूरी चार्टर बनाया हुआ है कि ये बाकी हम जनती हैं और वो दोस्ती हैं। नबी अलैहिस्सलाम लानत बरसा रहे हैं, ये वाली हदीस नहीं कोई बता रहा, जो कि हदीस कुदसी है, और वो वाली हदीस जो कि वीक है, ठीक है, वो हदीस मैं भी मानता हूँ बाय द वे, मगर उसकी खूबसूरती अलग है, वो किसी और लेक्चर में बताएंगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं उस हदीस के। मगर खुद सोचें, जब नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह की लानत की अगर गारंटी चाहते हो तो दुनिया में लोगों को फैसला कर दो कि ये जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा, प्रॉफिट असलम को भी कुछ नाम अल्लाह ने बताए थे जिनको मशरा मुबशरा कहते हैं, और उनके अलावा भी हैं 5-7 नाम कि जिनको नबी असलम ने दुनिया में अल्लाह ताला के इज़्ज़त से बता दिया कि तुझे अल्लाह ताला ने बिशारत दे दी। ठीक है, उस्मान गनी हैं, अली बिन अबी तालिब हैं, सईद बिन जायद हैं, अभी देर सो मैनी जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस जो कि नबी असलम ने भी बताया। वरना तो मैं आपको इतनी सी बात बताऊँ कि उमर बिन खत्ताब जिनको पै दर पै नबी इस्लाम बता रहे हैं तेरा महल देख के आया हूँ जन्नत में, तेरी हुरों से पर्दा किया हुआ है, आई मीन दिस मैन इज़ द पीक ऑफ द पीक, राइट। और वो हजरत हुज़ैफ़ा बिन जमान के घर पे जा के मतलब सीक्रेसी में जाते थे कि बता दे, क्योंकि हजरत हुज़ैफ़ा को नबी इस्लाम ने मुनाफिकीन के नाम बताए हुए थे,
मेरा नाम तो नहीं आया,
कोई मैं तो नहीं हूँ, मुझे बता दे, रोते थे कि मुझे बता दे नबी। और आगे से हुज़ैफ़ा भी देखें क्या स्टैंडर्ड था, अब उनको पता था कि नहीं हमें पता है, अब वो हमें बाद में पता किया उनको कैसे पता था, बहरहाल वो मैं किसी और लेक्चर में कवर करूँगा, मगर अमानतदारी थी, जैसे मैं नबी इस्लाम की अमानत नहीं बताती, मतलब सोचें कि क्या क्या स्टैंडर्ड आपस में टकरा रहे हैं कि उमर बिन खत्ताब सवाल कर रहे हैं और आगे से हुज़ैफ़ा कह रहे हैं नहीं बता सकता। ठीक है, सहाबा ने फिर हुज़ैफ़ा से कहा कि ये आप क्या इनका चल रहा, बहरहाल लंबी कहानी है, हम सबको पता है मशहूर वाक़ है, मगर हज़रत उमर बिन खत्ताब को शक है, ठीक है, कि कहीं बाद में उस बशारत के बाद ना मुझसे गलती हो गई हो, और हमें यकीन है हम जनती हैं, मेरा मौलवी जनती है, मेरी पगड़ी वाला कलर जनती है, बाकी सब दोस्त की हैं, मतलब ये हजरत उमर को यकीन नहीं आया मगर मस्जिद बिलाल के मौलवी साहब को यकीन आ गया है, तो फिर कोई मसला है ना, फिर अदम बर्दाश्त ऐसे ही आते हैं ना, जब आप किसी की बाउंड्री को इतना स्ट्रांग पत्थर की दीवारें बनाएंगे तो एक कॉमन सेंस की बात है सर्वाइवल के लिए, फिर आप इसको ग्रुप बायस कहते हैं कि आप अपने ग्रुप के लिए बायस होंगे ही होंगे, तो फितरी तकाजा है। पाकिस्तान के झंडे को क्यों आप इंडिया का झंडा छत पे लगाएं मोहल्ले में क्या होगा आपके साथ, या ईरान का लगा दें, ताजिकिस्तान का लगा दें, चलिए इंडिया पे तो हमें प्राइम किया गया ना उसके खिलाफ, ठीक है, आप श्रीलंका का झंडा लगा दें, अमेरिका का लगा दें, आप आपकी आपके अंदर से क्यों एक एक, एक रिपल्शन आएगी कि नहीं ये काम नहीं करना, बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड एज अ ग्रुप, और ग्रुप के लिए आप फिर अपनी बाउंड्री खुद बनाते हैं कि ग्रुप के बाउंड्री बनाओ और मैं वैसा ही हो जाऊँ जैसा मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप वैसा ही हो जाए जैसा मैं हूँ, इसको ग्रुप बायस कहते हैं, और उसके खिलाफ कोई सही बात भी कर रहा हो तो आपको गलत लगती है, इसको बायसनेस कहते हैं, हाँ उसको नहीं आपको सही लगती है फिर, मतलब आपकी तारीफ गलत की जाए ग्रुप की, गलत तारीफ की जाए तो आप कहते हैं बिल्कुल लॉजिकल आदमी है, बहुत लॉजिकल बात की आपने, ठीक है, पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं, असल में नहीं करते, 73rd नंबर है हमारा दुनिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, नंबर 2 पे सऊदी अरब है, स्टैट चेक करें ना, मगर मैं कहूँ ना पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़कात देते हैं, हाँ बिल्कुल सही देते हैं, क्योंकि बायसनेस से हमें हम उसकी गलत डेटा को भी सही मान लेते हैं। और जो चीज़ सही कोई बंदा कहे कि सर लियाकत अली खान साहब को जिनाह साहब ने कहा था दोबारा चोरी ना करी, क्या चोरी की थी उन्होंने, कि उन्होंने एक दफा मोहम्मद अली जिनाह साहब से कहा कि मेरे पास नेहरू के कुछ खत हैं मैं पब्लिश करूंगा तो ये सड़क क्रॉस नहीं कर सकेगा, ऐसी ऐसी छिछोरी रखते हैं करता है नेहरू, जो कि करता भी था, तो जिनाह साहब ने कहा दोबारा तूने ये बात मुझे की ना कि तूने किसी की प्राइवेसी इन्वेड की है, तो मेरे 20 किलोमीटर रेडियस में ना आई, मैं तुझे सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, कि तुझे ये कैरेक्टर है तेरा। अब मैं ये वाक्य सुनाऊं, सोचे जरा अंदर से खून के ना क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, लियाकत अली खान के खिलाफ बात, और मैं जिनाह साहब की तारीफ कर रहा हूँ इधर, लियाकत अली खान साहब की बुराई नहीं कर रहा, इंसान है कोई नबी थोड़ी है, बंदा बशर है, गलती होगी, मगर अंदर से कैसे एक होता है कोई, ये तो कोई इंडियन टाइप बंदा लगता है, ठीक है, ये से ग्रुप बायस कहते हैं। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था कि आपको पछले अंदर से जो एक शोरिश होती है ना वो बायसनेस कहलाती है। आप बिल्कुल इस तरीके से, मैंने जिस दिन आला हजरत बोला अहमद रबी साहब को, देवबंदियों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया, अच्छा आप पता चला तुम्हारा असली रंग बाहर आया, कि वो क्या सबज। फिर जिस दिन इमाम जाफर सादिक को इमाम जाफर सादिक बोल दिया, नबी अलैहिस्सलाम का बच्चा इनको इमाम जाफर सादिक बोल दिया, जिसको अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरे वो 3 साल जो जाफर सादिक के अंदर गुजरे वो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी का इल्म एक तरफ और जाफर सादिक से 3 साल सीखे एक तरफ। ठीक है, हनफी होने के बावजूद किसी भी हनफी के घर में इमाम जाफर सादिक की किताब नहीं पढ़ी हुई, क्यों नहीं पढ़ी हुई हमारे घरों में, क्यों नहीं पढ़ी, हम हनफी हैं आप लोग, और उनके उस्ताद को जिनको उन्होंने कहा कि मेरी सारी की सारी जो है ना उम्र जो इल्म में गुजरी वो इसकी मरहून मिन्नत है, उसकी किताब हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज लोकल मौलवी ने कहा था नहीं वो शिया है, इसको ग्रुप बायस कहते हैं और कुछ भी नहीं। अबू हनीफा ये सुन लें तो अबू हनीफा खुद आंखों से रोएंगे कि यार ये फॉलोवर है तुम हनफी कहते हो लानतुल्लाह आप लोगों के ऊपर कि अपने आप को हनफी भी कहते हो और मेरे उस्ताद को गालियां देते हो। ठीक है, सो इट्स अ बायसनेस जो कि फिर एब्सोल्यूट साइकोलॉजी क्रिएट करती है। ग्रुप बायस का नेक्स्ट स्टेप होता है एब्सोल्यूट साइकोलॉजी के, एब्सोल्यूट साइकोलॉजी का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई करें या 0 से मल्टीप्लाई करें किसी भी चीज़ को। आप मुझे पसंद हैं या मेरे ग्रुप के हैं तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप 100% क्लियर हैं, आप मोमिन हैं। और अगर आप मेरे ग्रुप के नहीं हैं तो आपके अंदर जो कुछ भी उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि आप 100% जन्मी हैं सर अबू लहर और उसके आसपास आपका नाम और उसके ऊपर या नीचे आपके अब्बा जी का नाम, दैट्स हाउ अबू लहर अबू जहल आप कहीं पर मिक्स हो रहे हैं एक जैसी पार्टी। दिस इज वॉट द एब्सोल्यूट साइकोलॉजी डज। और एब्सोल्यूट साइकोलॉजी तभी होती है जब आप ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स बना लेते हैं। तो फिर वही पाकिस्तान कैसे टूटा था, एब्सोल्यूट साइकोलॉजी थी, बंगाली वर्सेस ईस्ट वर्सेस वेस्ट हो गया था। आप जान की बाजियां लगाई हैं बंगालियों ने मुस्लिम पाकिस्तानियों को मारने के लिए, पढ़ें तो सही ना हिस्ट्री, क्यों ग्रुप साइकोलॉजी, आप ग्रुप्स बन गए थे आपस में और ग्रुप किसी भी आइडेंटिटी को ट्रिगर करके निकाल लेते होते हैं कैसे, अभी अभी देखना अभी तालिबान की हुकूमत आई बीच में से एक फैक्शन का ग्रुप साइकोलॉजी के थ्रू टीका लगा के ट्रिगर किया जाएगा और वो समझ आपके समझ आवाम बेवकूफ़ होती है, नहीं आवाम बेवकूफ़ नहीं होती, उनको पता होता क्या करें मगर उनकी बायसेस को ट्रिगर करके उनको रैशनलाइज कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से वो महाजर कौमी मूवमेंट बनी थी, फिर वो पश्तून मूवमेंट चल रही है, क्या नाम है उसका, मुझे तो नाम भूल जाता है उस फरहान के खकान जो भी इनका पश्तून लीडर है इस वक्त, वो ग्रुप साइकोलॉजी ट्रिगर कर दी, वो आपस में फैक्शन क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये तो करें पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कर रहे हैं या सोशियोलॉजी के अंदर ट्रिगर होती है, एक प्योर बायोलॉजी के अंदर भी बायस ट्रिगर करते हैं, वो इतनी सलाहियत करती है कि जैसे फिर रिलीजन या ऐसे सेंटीमेंट्स जो कि डीपर हों वे डीपर, वो फिर आपका सेरोटोनिन ट्रिगर कर देते हैं। वो है आपकी बरेलवी मूवमेंट या देवबंदी मूवमेंट, शिया मूवमेंट, अहले हदीस मूवमेंट, कुछ चक्कर ही नहीं है। मैं अगर ये काले कपड़े पहने हुए हमने, मैं अगर वाइट कलर की वो शिया टर्बन पहन लूँ, आपने एक लफ्ज़ नहीं सुनना मेरे बारे में मेरी तरफ से।
इवन कि अगर आप मुहर्रम में सिर्फ ब्लैक पहन लें तो वो फौरन
जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्यों, क्योंकि बस जो कुछ भी है गलत है, पूछ लेना क्यों गलत है। ठीक है, ये नहीं पता क्यों गलत है मगर गलत है,
वही
बस सुनना नहीं बस इस बारे में बात नहीं करूंगा, बस गलत है।
हाँ,
वरना अपने बच्चों को साइंस की लेक्चर देते हैं, लॉजिक समझाऊं तुम्हें लॉजिक, तो यहाँ पे भी लॉजिक समझा देना, फिर यहाँ पे क्यों लॉजिक आपका जीरो हो जाता है, नहीं बस गलत है इस बारे में मैं बहस ही नहीं करूंगा। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे उलमा कराम कादियानियों से डायलॉग कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, सेंसिबल उलमा कराम क्यों डायलॉग के बगैर कैसे वापस लेके आए उनको, और ये नहीं सुनी गलत है बस शिया गलत है, शिया बिल्कुल काफर हैं, अच्छा ठीक है काफर हैं, अच्छा बताओ क्यों काफर हैं, हमें भी तो बताओ क्यों काफर, नहीं बस आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। सो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज फिर वो एब्सोल्यूट साइकोलॉजी में चली गई, उसकी हर चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई करनी ही करनी है, जो कुछ मर्जी हो जाए, जितना मर्जी लॉजिकल आदमी हो, आपको मैंने कुछ भी नहीं मानना, मैंने सुनना ही नहीं है, बिकॉज यू लॉस्ट मी एट हेलो, बिकॉज आई जस्ट लुक्ड एट यू, जज यू, कहानी खत्म। ये जजमेंट जो है ना, ये साहबा के पास नहीं थी, साहबा इस जजमेंट के खिलाफ इस्लाम लेके आगे चल रहे थे कि लोगों को दुनिया में ना बता दें कि जनती है उसकी है, जो कुछ मर्जी हो जाए। ऊपर इस्लाम की नहज क्या था, नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस सुनाई, मैं आपको इस तकदीर और कज़ा कदर में बहस में नहीं जाता होता क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया, मगर हदीस बड़ी क्लियर है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आखिरी सेकंड में हिदायत आनी अल्लाह ने बचा लेना, और हम समझ रहे हैं कि ये पक्का दोज़खी है, क्या पता मैं दोज़ख में बैठा सड़ रहा हूँ, अल्लाह ताला बचाए, और मैं जिनको दोज़खी कह रहा हूँ और मैंने प्रूव भी कर दिया और अल्लाह ताला एंड में उनको हिदायत देते हैं या उनको वाकई में हिदायत मिली हो हमें नजर आ रही हो,
बातिन का तो किसी को नहीं पता।
जी हाँ बिल्कुल, यही तो बात है, बातिन का तो लफ्ज है, अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला ने इसलिए कहा था यहाँ से मैं हिदायत नहीं देता, किसी की लॉजिक उसके ऊपर ना चले जाना, यहाँ से देता हूँ, कब दिल फेर दूँ उसको पता ना चले।
हजरत वासिफ से किसी ने, रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने क्वेश्चन किया कि सुना है 72 फिरके बनेंगे तो कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा, उन्होंने जवाब दिया वो जिसका कोई फिरका नहीं।
अल्लाहु अकबर,
तो ये फिरका परस्त हक परस्त
नहीं, मगर सर वासिफ अली वासिफ कौन होता है, उसने तो कोई पगड़ी नहीं पहनी हुई थी,
उनकी तो
वो बताएंगे इस्लाम का, हर कोई डॉक्टर बना फिर रहा है, समझ रहे ये है, ये देखें जरा, इट्स अ वे बिगर प्रॉब्लम।
हमारी उधर यूके में कादियानियों के साथ सिटिंग थी तो वो उनका एक क्लेम था कि आप कहते हैं कि खत्म नबूवत का आपका अकीदा है, तो हाउ कम आपका ये भी अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे,
उनका ये अकीदा तो नहीं है।
ये ही ग्रुप बायसनेस थी कि वो इतने एडमेंट हो गए उस पूरे डिबेट के अंदर कि दे वर नॉट लिसनिंग टू अस, कि हम उनको कह रहे थे कि वो उम्मती आएंगे, حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اچھا ہمیں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں وہ کہ اچھا عیسیٰ کیوں
آیا تھا باعث انہوں نے کہا نہیں اگر آپ کا ختم نبوت پہ اگر عقیدہ ہے تو ہاؤ کم کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ پہ بھی آپ کا عقیدہ ہے اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ایز این امتی آئیں گے بٹ دے ور ناٹ لسننگ
نہیں نہیں وہ ایسا نبی ہی آئیں گے مگر ہوں گے وہ نبی علیہ السلام کی امتی نبی ہی آئیں گے مگر وہ نبوت اس لیے تو ہم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے کیا کہ وہ نئی نبوت نہ مل جائے ان کو قادیانیوں کو کوئی یہ پوچھے نا آپ سے کوئی قادیانی تو ان کو بتانا کہ تیسرا اگر فوت ہوتے نا اور دوبارہ زندہ آتے تب آپ کا کوئی آرگیومنٹ بنتا تھا کہ دوبارہ کیوں نبوت ملی نبی اسلام کے بعد وہ ابھی زندہ ہے بھائی آپ کے نبی نے ان کو مارا ہے ہمارے نبی نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے جب ایک بندہ پہلے سے نبی ہے نبی اسلام تو ان کے بعد نبی بنے تو ایز اے لیونگ بینگ واپس آتا ہے فار ایگزامپل میں اگلی ویڈیو میں ادھر آتا ہوں تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ ساحل ادیم پہلی دفعہ یا پھر اس کو کوئی نئی انٹری ملی ہے میں دوبارہ سے انٹر ہوں بندہ تو وہی ہوں میں مر تھوڑی مر کے تھوڑی زندہ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے سو اٹس اے ویری کامن سینس تھنگ اف یو بلیو ان آل آف اٹ اٹس دا اونلی ٹو اور تھری تھنگس بہرحال یہ بحث ہو رہا ہے مگر جو اس وقت 20 سال پلس ہو چکا ہے یا 18 سال 17 سال پلس ہو چکا ہے اور جو 50 سال کا بھی نہیں ہوا اس کو میری ڈائریکٹ دعوت ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ججمنٹ چھوڑ دیں آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کو بتانا بند کر دیں گے کہ ان کے ساتھ مسئلے کیا ہیں کیونکہ کبھی بھی آپ اس بندے کو کال نہیں کرتے جو آپ کو جج کرتا ہے آپ اس کمرے میں نہیں انٹر ہوتے جو آپ کو جج کرتا ہے پولیس جج کرتی ہے آپ کو کبھی ہوا ہے کہ سر میں سے چوری ہیلو السلام علیکم پولیس 15 جی سر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کیا کروں اس بارے میں انہوں نے کہا نہیں ادھر ہمارے پاس آ بتا دے کیا کروں ادھر آ میں تو بتاؤں گا اس سزا کیا ہے